80% लोग जो पहली प्रॉपर्टी लेते हैं या दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं वो डिसेटिस्फाइड हुए हैं अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग से। ये एक सर्वे के अंदर खुलासा हुआ है, लेकिन इस पे बहुत सारी बात बहुत सारे लोगों ने आज तक कभी नहीं की। तो आज इस कन्वर्सेशन के अंदर हम लोग आपके साथ में इस तरह की बहुत सारी टिप्स डिस्कस करेंगे जो कि आप या आपके जानने वाले अपना पहला या दूसरा घर, फ्लैट, कोई जमीन खरीद रहे हैं तो किन किन चीजों के आपको ध्यान रखने, तो उन टिप्स के ऊपर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ में जो गेस्ट हैं वो प्रॉपर्टी मामलों के अंदर पिछले कई सालों से डील कर रहे हैं और डील करते वक्त इन्होंने इस 20 साल के दौरान इतने एक्सपीरियंस इकट्ठे किए हैं कि उन सारे एक्सपीरियंसेस का निचोड़ इस कन्वर्सेशन में आज इनसे हम लोग लेंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ अपने गेस्ट को, मिस्टर राजेश। 80% तो बहुत बड़ी तादाद है सर।
क्वाइट गुड फिगर जी, अच्छी फिगर है।
अच्छी तो नहीं है लोगों के लिए, तो बुरी है सर ये फिगर।
नहीं, 80% लोग मतलब अच्छी फिगर है कि 80% लोग काफी तादाद है। हाँ, जो इससे अफेक्टेड है,
बहुत अफेक्टेड है सर,
तो इस पे ध्यान देना जरूरी है।
जी सर
जी,
क्या रीजन तो सोचते हैं आप?
रीजन तो यही है कि सबसे पहले तो जो खरीदार है उसकी अपनी क्लैरिटी नहीं होती कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका बजट क्या है। पहले तो उसको खुद नहीं पता होता बेचारे को, वो शुरू करता है लेट इट बी 1 करोड़ से, रिक्वायरमेंट उसकी मीट नहीं करती, रिक्वायरमेंट ज़्यादा घर की है। फिर उसको लोन का नहीं पता कि उसको लोन कितना मिल सकता है
जी।
फिर उसको ये नहीं पता है कि मैंने जो आगे प्रॉपर्टी खरीदनी है उसमें हमने कितने की रजिस्ट्री करानी है, कितने एक्सपेंसेस हैं
जी,
कुछ कैश पार्ट इन्वॉल्व है कि नहीं है, चेक पार्ट है, ये सब चीज़ें उसको पहले थोड़ा सा होमवर्क करना ज़रूरी है, तो वो नहीं कर पाते काफ़ी लोग।
अब मैंने अगर सर मकान खरीदना है जी, अब मैं तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करता।
हाँ ठीक,
तो मैं कैसे शुरुआत करूँ मतलब घर लेने की?
जी जी,
मतलब ऐसे मैं पहला स्टेप इन करूँ, फिर मैं दूसरा स्टेप इन करूँ
जी,
ताकि इस पूरी डील के अंदर ये जो मैं 80% में ना हूँ।
ठीक ठीक,
उसके बारे में बताओ सर क्या करें।
देखिए है कि टू स्टार्ट विद, पहले तो आप अपने आप को क्लेरिफाई करें कि अपने आप को मतलब डिसाइड करें कि व्हाट इज़ योर एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट, आपकी अकोमोडेशन साइज, देन व्हाट इज़ योर बजट, देन यू शुड नो द सोर्सेज ऑफ योर फंड्स। ऐसा नहीं है कि आपने 1 करोड़ रुपए की चीज़ लेनी है, आपके पास 20 लाख हैं और आप आगे प्रॉपर्टी खरीदने चले जाओ और आपके बाकी फंड्स का आपको पता नहीं। आप आम आदमी ये सोचता है कि मैं ये किसी को एडवांस दे दूंगा, फाइनल कर लूंगा और फिर मैं बाकी अपनी प्रॉपर्टी इधर उधर बेच के पैसे इकट्ठे कर लूंगा
जी,
तो वो फिर फंसने के चांसेस हैं।
okay.
क्योंकि जिसको आप पैसे दोगे वो भी आगे कोई और प्रॉपर्टी ले लेगा, वो भी फंस जाएगा। तो इसलिए आपके जो फंड्स हैं, सोर्सेज हैं,
आपके कह रहे कि जब मैं लेने जा रहा हूं
तो पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्लियर हो
जी
और फिर मेरे फंड्स क्लियर होने चाहिए।
ओके
okay. ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर्टी पसंद करने के बाद अपने फंड्स इकट्ठे करें।
चलिए, मेरे पास जो मैंने घर लेना है
जी,
या कोई फ्लैट लेना है
जी,
वो जितने के आसपास का है मेरे पास फंड्स अवेलेबल
जी जी,
लेकिन अब मैं करूं क्या?
दो ही तरीके हैं, एक तो ये है कि आप फिजिकली वहां पर जो नियर बाय ब्रोकर्स बैठे हैं उनके पास जाएंगे, दे विल गिव यू गुड इन्वेंट्री क्योंकि नियर बाय जो जो ऑप्शंस हैं दे कैन शो यू। या सेकंड इज आप न्यूज़पेपर के थ्रू जो संडे ट्रिब्यून आता है और आता है, या ऑनलाइन साइट्स हैं 99acre.com है, property.com है, तो उनसे जो नियर बाय ब्रोकर्स हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करें।
ठीक है जी,
फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, फिर वो आपको ऑप्शंस देंगे।
नहीं, मैं कह रहा हूँ एक घर मेरे को पसंद आ गया,
चलो लेट इट बी पसंद आ गया,
आपने दिखाया या जो भी उस एरिया के जो भी डीलर थे,
हाँ किसने दिखा दिया आपको?
जी, मेरे को एक घर पसंद आ गया।
ठीक है,
तो मेरा पहला काम क्या होना चाहिए?
सबसे पहला काम है कि हम जो ऑनर है उससे मीटिंग फिक्सअप करेंगे
जी।
ठीक है, तो मीटिंग जब फिक्सअप करते हैं ऑनर की, चाहे वो डेफिनेटली इट शुड एडवाइजेबल की थ्रू प्रोफेशनल डीलर के थ्रू करें
जी,
तो विद डॉक्यूमेंट्स मीटिंग करें हमेशा।
ये आपने प्रोफेशनल डीलर बोला ना सर?
हाँ जी हाँ जी,
एक बीच में इसका भी जवाब दे देना कि व्हाट यू एक्चुअली मीन बाय प्रोफेशनल डीलर।
प्रोफेशनल इज हु इज डूइंग दिस बिजनेस फुल टाइम।
पर उसको चेक कैसे करें सर? ऐसे तो सब बोल ही रहे
हैं। बता रहा हूं, बता रहा हूं, सुनिए। प्रोफेशनल इज जिसका एक प्रॉपर सेटअप है विद प्रॉपर यू कैन से सिस्टम है काम करने का। ऐसा नहीं कि कोई चलता फिरता डीलर कोई छोटे से ऑफिस में बैठा है या आपको रास्ते में मिल रहा है या कोई साइड बिजनेस कर रहा है, करियाने का काम कर रहा है, वो कह रहा है जी मैं डील करवा देता हूँ, तो देन यू हैव टू बी केयरफुल। तो प्रोफेशनल मींस जिसका प्रॉपर एक सेटअप है एंड उसकी कोई क्वालिफिकेशन है, पढ़ा लिखा है जी. तो वो उसके पास आप जाएं तो कम से कम वो एथिकल तरीके से काम करेगा. अरे ही इज क्वालिफाइड.
वैसे आमतौर पे तो होता यही है
जी
कि जैसे मैंने लेना है
जी
तो मैं उसको अप्रोच करूंगा जिससे मेरे भाई ने लिया.
हाँ, डेफिनेटली जान पहचान
रेफरेंस. लेकिन मेजोरिटी अगर देखा जाए इंडिया में जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं वो रेफरेंस बेस पे.
हाँ, डेफिनेटली.
लेकिन उसके बाद में भी 80%
जी जी जी
ये जो 80% ये जो बात हम लोग कर रहे हैं
जी,
तो ये मतलब इतनी जानकारियां इतना रेफरेंस उसके बावजूद भी 80% फिर कहाँ फंसती हैं चीजें जाके.
नहीं, वो 80% तो तब फंसती है ना कि लेने वाला भी अनजान है, उसको कुछ नहीं पता है, वो भी केयरलेसनेस है या अनएजुकेटेड है. ऐसी जो बेचने वाले हैं समटाइम्स वो भी फंस जाते हैं. ऐसा नहीं कि फ्रॉड के अंदर इंटेंशनली फ्रॉड कर रहा है कोई. आप देखिए कि समटाइम जो परचेजर है वो चीज़ खरीद रहा है, उसके फंड्स नहीं अरेंज होते हैं किसी भी रीज़न से, तो जो सेलर है वो भी इनोसेंट है, वो भी फंस गया. तो अल्टीमेटली जो परचेजर है वो तो अपने आप को इनोसेंट कहेगा, जी मैं फंस गया. फंसा तो एक्चुअल में सेलर है, क्यों आपने उसको थोड़े से पैसे दे के फंसा लिया और बाद में आप कह रहे हो मेरे तो फंड्स नहीं आए, मेरी वो पुरानी प्रॉपर्टी नहीं बिकी, मेरा लोन नहीं हुआ है, वो ही फंस गया. आप अपने जो पैसे दिए लेने के लिए आपको हो गया मेरे साथ फ्रॉड हो गया.
तो अभी तक की बात से जो मैं समझाऊँ ना
जी,
वो ये कि पहले मेरे पास पैसे हों
जी
तो मैं प्रॉपर्टी लेने की बात
करूं.
अदरवाइज शांति से,
अदरवाइज आराम से बैठे रहें.
हाँ.
आप ऐसी सर्वे करते रहो और सर्वे करने का मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा. तो
पहला तो स्टेप ये हो गया कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं फंड्स हो गए
आपके पास,
तो मैं तो जाऊं फिर जाऊं प्रॉपर्टी
जी. आपको पता हो कि आपके के पास कितना लिक्विड मनी है, कितना आपने बैंक लोन लेना है, कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसे लेने हैं, किसी रिलेटिव से उधार लेने हैं, यू शुड नो कि आपके पास कहां से.
पहला तो स्टेप ये हो गया. अब दूसरा स्टेप,
तो आप जब सेलर से मिलते हैं तो ऑफ कोर्स आपको देखना है कि जो सेलर है वो डॉक्यूमेंट पूरे लेके आया है, उसके डॉक्यूमेंट्स में उसके ऑनरशिप का टाइटल है, कितने लोग हैं उसमें, कोई इंडियन है, कोई NRI है.
ये क्यों इंडियन NRI? मतलब
इंडियन NRI है कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ द सेलर इज इंडियन तो परचेजर ने उसका 1% TDS डिडक्ट करना है, डिपॉजिट करके देना है.
जो पेमेंट उसको देनी है.
हाँ, उसमें से 1% डिडक्ट करना है, काट के देना.
ओके. जैसे मैंने 100 रुपया देना है
तो आपने
तो उसमें से 1% मैं TDS को भरूंगा.
हाँ, TDS डिपॉजिट करके अगेंस्ट द पैन नंबर ऑफ द सेलर.
ओके.
हाँ, डिपॉजिट करके आप दोगे तब आपकी रजिस्ट्री होगी. ऑफ कोर्स सेलर को वो अमाउंट इज रिफंडेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हेन ही फाइल्स रिटर्न्स फॉर इनकम टैक्स नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर.
ओके. व्हाट अबाउट जो NRI बता रहे थे आप?
NRI के केस में जो TDS है वो अमाउंट को ज्यादा है.
प्लस ये पैन इंडिया या स्टेट वाइज?
पैन इंडिया जी, इट इज पैन इंडिया.
ओके. अगर कोई बॉम्बे में खरीद रहा है तब भी सेम है, दिल्ली में खरीद रहा है तब भी सेम है
फॉर एवरी NRI फॉर एवरी इंडियन.
ओके.
बट द NRI कैन क्लेम द डिडक्शन नेक्स्ट ईयर.
अच्छा, क्लेम वो भी कर सकते
हैं? डेफिनेटली ही कैन टेक द रिफंड अगर उसका कैपिटल गेन नहीं बन रहा है.
ओके.
कैपिटल गेन इज बेसिकली ये क्या है कि जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और जब आप बेच रहे हो जो आपको गेन हो रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेती है.
ओके. तो ये सब जानकारी जो आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या एजेंट है वो आपको बताएगा?
वो बताएगा कि जब आप मिल रहे हो क्लाइंट से, उसके पेपर देख रहे हो कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है क्या, उसने सारी पेमेंटें गवर्नमेंट की हुई हैं और उसकी रजिस्ट्री टाइटल ऑनरशिप जो है.
ये सरकारी, ये गवर्नमेंट की फीसेस किस तरह की होती हैं सर?
गवर्नमेंट की जैसे उसके कोई ड्यूज हैं पुराने.
अच्छा, टैक्सेस.
एक टैक्सेस तो अलग है, एक तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की कॉस्ट, उसकी कोई एक्सटेंशन, उसकी कोई लीज मनी.
ओके.
एक तो वो ड्यूज हो गए. एक जब हम प्रॉपर्टी की पोजेशन हैंड ओवर करते हैं, लेते हैं, क्लाइंट को देते हैं, तो उसके जो बेसिक ड्यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल, वाटर, प्रॉपर्टी टैक्स, गैस बिल्स, ये सब चीजें भी सारी अप टू डेट लेनी होती हैं.
ओके.
तो हमने जब फर्स्ट स्टेज पे ऑनर से मीटिंग की तो हमने उसे पेपर्स सारे ऑनरशिप के, क्या हम जेन्युइन बंदे से मिल रहे हैं. ऐसा नहीं कि पेपर किसी और के नाम के हैं और मिल किसी और से रहे हैं. एंड यू शुड इंश्योर कि जिससे हम मिल रहे हैं शुड बी द ऑनर.
तो मतलब उसका कोई ID प्रूफ?
डेफिनेटली आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब लेना चाहिए.
जैसे कई दफा ऐसा भी होता है कि आप प्रॉपर्टी की डील करने के लिए गए और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर ही है वो कह रहे हैं आप मेरे से ही डील करो
जी.
तो ऐसे में क्या करें फिर?
उस केस में क्या है कि हमें उस एग्रीमेंट जो डीलर या ब्रोकर, जैसे हम फाइनेंसर कहते हैं, जो ऑनर से डील बुक कर लेते हैं कुछ एडवांस अमाउंट दे के, उस केस में हम उसका फाइनेंसर का एग्रीमेंट चेक करते हैं.
अच्छा.
क्या उसने सेलर से एग्रीमेंट किया हुआ है और क्या उसने ID प्रूफ अपने उससे सेलर से लिए हुए हैं, अपने भी उसके ID प्रूफ होंगे. तो वो सारी चीज़ें हम पहले इंश्योर करेंगे, वेदर ही इज ऑथराइज्ड टू सेल द प्रॉपर्टी और नॉट.
ओके पर ऐसा होता है ना कई डील्स,
डेफिनेटली
ये प्रैक्टिस, लेकिन आप ये कह रहे हो कि अगर डायरेक्ट डील हो तो ज्यादा बेटर है ऑनर के साथ,
इट इज ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल जी, अगर आप डायरेक्टली ऑनर से मिल जाए और ऑनर आपको पेपर्स दिखाए डील करवाए अपने सेट।
यंग इंडिया इस टाइम मेट्रोपॉलिटन में रह रहे
जी,
मेट्रोपॉलिटन के अंदर न्यूक्लियर फैमिली
जी,
ज्यादातर लोग फ्लैट ही परचेज कर रहे हैं
जी, बिल्कुल ठीक है।
तो फ्लैट के अंदर थोड़ा सा बात बताओ कि क्या क्या ध्यान रखें, क्योंकि इसमें कई तरह की चीजें सुनने में आती हैं।
देखिए फ्लैट के बारे में तो पहले तो आप जो फ्लैट ले रहे हो यू शुड नो कि आप गवर्नमेंट के बने हुए ले रहे हो या आप किसी प्राइवेट बिल्डर्स डेवलपर से ले रहे हो। फिर जो भी आपको जैसे आप बिल्डर से बाय कर रहे हैं तो बिल्डर से जो भी वो कमिटमेंट कर रहा है आपको कि आपको पोजीशन कब देना है और क्या कुछ वो काम करवा के देगा है ना, वो और कौन कौन सी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, तो वो सब सारी चीज़ें आपको रिटर्न में लेनी है।
ओके
ठीक है, ये ऐसा ना हो कि आप बाद में वो कहें कि इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं कुछ हैं, यू शुड नो।
वो कौन कौन से फैक्टर हैं,
जैसे जैसे क्लब पूल कार कवर्ड कार पार्किंग जेनसेट की है ना बैकअप है
जी,
ठीक है तो जिम है ये सब
उसके चार्जेस कितने
चार्जेस आपको पर मंथ देने हैं, जो कार पार्किंग है उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं या एक कार पार्किंग या दो कार पार्किंग है, वो सारी चीजें आपको पहले रिटर्न में बात करके पहले रिटर्न में लेनी है उनसे।
एक ना फ्लैट में स्पेशली जो सुना है मैंने लोगों से
जी,
वो लोग यही बोलते हैं कि जी हमने फ्लैट बुक कराया था
जी,
हमें कहा था पोजेशन तब मिलेगा
जी,
पोजेशन आज तक नहीं मिला
जी,
तो ये एक बड़ी समस्या वाली है।
ये बड़ी एडवाइजेबल तो देखो यही है, अगर हमने कोई फ्लैट लेना है हम वही बाय करें जिसकी पोजेशन रेडी हो।
ओके
पहले बात तो वैसे यही है, अगर इसी प्रिंसिपल पे चले तो आप सेफ रहेंगे कि अपनी पेमेंट दो अपनी पोजेशन लो और शिफ्ट करो, दैट इज द सेफेस्ट। बट अब समटाइम्स क्या है कि आपके पास फंड्स कम होते हैं तो आप फिर कोई चीज़ बुकिंग वाली ले लेते हो, बिल्डर भी कहता है कि आपको हम दो साल में बना के दे देंगे, तीन साल में बना के दे देंगे, इन दैट केस डेफिनेटली आपका बजट कम है तो आप वो लोग इंस्टॉलमेंट्स वाली चीज
जी,
आपको लगता है कि मैं दो साल तीन साल में मेरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी तो मैं ले लूँगा, तो जो भी वो कमिटमेंट्स कर रहा है तो हमें वो रिटर्न में लेनी चाहिए। फिर उस बिल्डर ने जो गवर्नमेंट के अपने रजिस्ट्री वगैरह कराई हुई है, ड्यूज पूरे उसके हैं, रीरा में रजिस्टर्ड है, वो सब चीजें एक बार इंश्योर करनी जरूरी है।
ओके रेरा,
हाँ रेरा के अंडर रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट के उसने जहाँ से लैंड ली है या जहाँ से भी लैंड एमसी के अंडर लैंड होती है या गवर्नमेंट के पास होती है, तो जहाँ से लैंड ली है ही शुड इंश्योर कि उसने रजिस्ट्री पूरी पेमेंट दी हुई है उसकी, ऐसा ना हो
तो ये डॉक्यूमेंट देता है वैसे वो बिल्डर?
नहीं देता, आपको चेक करना जाके अथॉरिटी से।
और ऐसे केस में कि उसने लिख के भी दे दिया
जी,
हमने चेक भी करा लिया
जी,
अब वो पोजेशन नहीं मिला,
अब पोजेशन नहीं मिला तो कस्टमर के पास तो चॉइस है ही है कि वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है।
ओके
कंज्यूमर कोर्ट उसको रिलीफ देता है, अमाउंट जो डिले है उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, कंपनसेशन भी मिलती है।
ओके
तो इन दैट वे उसको लीगल रिलीफ मिल जाता है।
मेरे किसी जानकार ने कोई घर बुक कर लिया जैसे
जी,
उसको पसंद आ गया, उसने लेना था
जी,
अब वो पेपर लेके चला गया बैंक में
जी,
और उसका लोन हुआ नहीं
जी,
उसमें पता नहीं दिक्कत उसके कोई जैसे
हो सकता है उसके सिबिल में सैलरी में इनकम में
इनकम में कुछ इस तरह का था, पता नहीं वो बैंक वाले कह रहे थे इस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं कर सकते हम।
हाँ हो सकता है वो प्रॉपर्टी कहीं पर उसका कोई कोर्ट केस या कोई डिस्प्यूट या अटैच चलता हो, उसकी गवर्नमेंट से रजिस्ट्री ना हो,
तो ऐसे केस में वो क्या करे, अब उसको बयाने का पैसा तो फंस गया उसका जो एडवांस पेमेंट उसने दी थी, अब वो क्या करे बेचारा।
देखो उसके पास तो
पैसे, मैं ये भी सोच रहा था कि वो ही बेचारा थोड़ी है, वो जिसे खरीदा है वो भी तो बेचारा है,
जिसने बेचा है वो भी बेचारा है। पर ये इसीलिए तो जब आप खरीद रहे हो तो आपको थोड़ा इंश्योर करना है कि एग्रीमेंट करने से पहले
जी,
जब आप 20% 25% किसी को एडवांस दे रहे हो उससे पहले आपने ये डॉक्यूमेंट्स बैंक से वेरीफाई करने हैं और अथॉरिटी से वेरीफाई करना है कि क्या इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाएगी, और आपने अपने जो रिटर्न्स हैं अपने क्रेडेंशियल्स हैं स्टेटमेंट्स हैं उस रिकॉर्ड अपना जो आधार कार्ड पैन कार्ड सब चीज़ें बैंक को दिखा के पहले आपने लोन की इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी है।
अच्छा
उसके बाद आपने एग्रीमेंट करना है सो दैट सैलर भी ना उसमें फंस जाए और बायर भी ना फंसे।
मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे आपने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली उसके पेपर्स को ले जाके आप अपने बैंकर के पास जाएं, और उसको बोलें कि ये एक प्रॉपर्टी मैंने फाइनल की है
जी,
क्या मुझे इसके ऊपर इतना लोन मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा
जी, वेदर ही इज एलिजिबल फॉर दैट अमाउंट। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि मैं जो 1 करोड़ रुपया लोन लेना है पर आपकी एज पर इनकम लोन आपका बन रहा हो 50 लाख
जी,
तब भी आप एग्रीमेंट करके फंस जाओगे
जी।
तो इट्स बेटर कि आप अपने रिटर्न और इनकम प्रूफ लेके पहले बैंक से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लें कि हाँ मैं इतना लोन मुझे मिल जाएगा।
ओके,
प्लस जो एडवोकेट होते हैं बैंक्स के पैनल पे होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, उनसे आप ऑनर से अथॉरिटी लेटर लीजिए
जी,
तो वो वहाँ से अथॉरिटी से वेरीफाई करें कि इसका टाइटल ठीक है, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट नहीं है, लोन नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, फिर एग्रीमेंट में जाएं।
वैसे अभी तक जो बातें हमने की है ना
जी,
वो हमने की है सेलर प्रोस्पेक्टिव से,
ठीक है जी,
बायर
प्रोस्पेक्टिव से ऑफ कोर्स।
तो ऐसे ही कुछ आप डिटेल दें, टिप्स दें कि जो सेलर है, क्योंकि सेलर के साथ भी इशू हो सकता है कभी,
डेफिनेटली
वो जो 80% की स्लैब पे बता रहे थे ना डिससैटिस्फाइड है, उसमें बायर ही नहीं है, सेलर भी होंगे,
सेलर भी होंगे, बिल्कुल होंगे। सम टाइम ऐसा होता है, सुनने में आया है कि मैंने किसी को अपना अपना घर बेचा, एग्रीमेंट किया और जो उससे मैंने एडवांस लिया वो मैंने आगे फर्दर प्रॉपर्टी बाय करने के लिए दे दिया
जी,
क्योंकि इतनी ह्यूज अमाउंट तो प्रॉपर्टी के बदले हर आदमी कोई ना कोई प्रॉपर्टी री इन्वेस्ट करता है, लेता है
जी,
इतने पैसे तो पर्सनल किसी को चाहिए नहीं यूज के लिए
जी।
तो अब उस केस में समटाइम्स परचेजर कहता है जी मेरा लोन नहीं हो रहा, मेरे तो आगे से पैसे आने थे, किसी और सिटी में प्रॉपर्टी बिकनी थी
जी,
तो सैलर भी उस केस में फंस गया,
बिल्कुल फंस गया
है नहीं, तो सैलर की भी तो प्रॉब्लम है, लेट इट बी 20% सैलर भी फंस जाते हैं
जी।
तो एज ए सैलर मेरी भी ड्यूटी है कि मैं जब डील करूँ किसी बायर से
जी,
आई शुड चेक द कस्टमर्स बायर्स प्रोफाइल व्हाट ही इज डूइंग, वो एंड यूजर है कि वो कोई फाइनेंसर ब्रोकर है लेने वाला, वो जॉब वाला है, कल को उसके फंड्स के सोर्सेस क्या हैं।
अच्छा, एक मैंने सुना है कि जैसे आपने किसी को एडवांस पेमेंट दे दी
जी,
और उसके बाद में मेरे पास बाकी पैसा इकट्ठा नहीं हुआ
जी,
तो मेरा एडवांस भी मर जाएगा
जी,
ये क्या चीज है मतलब?
देखिए एज पर जो हम एग्रीमेंट सेल करते हैं उसमें तो ये लिखते हैं कि अगर परचेजर टाइमली एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट नहीं करता है तो उसका एग्रीमेंट की जो अमाउंट है वो फोरफिट हो जाएगी।
तो इस एग्रीमेंट की क्या कोई वैलिडिटी होती है?
डेफिनेटली इस एग्रीमेंट की जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स तक है।
अच्छा,
और ये जो एप्रिहेंशन है कि मेरा एडवांस अमाउंट खत्म हो जाएगा, फोरफिट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा।
अच्छा,
भी कोई डेट फिक्स हुई आफ्टर 3 मंथ्स एंड रजिस्ट्री नहीं हुई, डील क्लोज नहीं हुई, तो दैट डजंट मीन कि वो अमाउंट सेलर ने फोरफिट कर ली ऑटोमेटिकली उसके फेवर में चली गई। नो, एग्रीमेंट इज स्टिल वैलिड फॉर 3 इयर्स। परचेजर जो है वो कभी भी क्लेम कर सकता है ऑन एनी बेसिस और कंडीशन उस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। इट वुड बी एमिकेबली डेफिनेटली विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। बट जो एग्रीमेंट अगर मैं एज ए सेलर सोचूं कि मैंने फोरफिट कर लिया, आपने तो पेमेंट दी नहीं ड्यू डेट पे, तो मैं अपने लेवल पे पर्सनल लेवल पे नहीं कर सकता। आई हैव टू सेंड अ नोटिस टू यू।
अच्छा जी,
ठीक है, देन आई हैव टू फाइल अ केस फॉर दिस ऑल्सो। लीगल लेट पे मुझे जाना पड़ेगा कि भाई मैंने ये पहले नोटिस भेजा है कि आप मुझे ड्यू टाइम पे पेमेंट करो, नहीं कर रहे हो, आपकी डेट निकल गई, आपका एडवांस फोरफिट है।
और अगर 3 साल हो गए तो वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, उसके लिए भी ऐसे ही लीगल प्रोसेस है?
नहीं, प्रोसेस तो लीगल ही रहेगा।
ओके, नहीं तो उसमें होगा क्या लीगल, मतलब जैसे
कोर्ट केस करना पड़े, फाइल करना पड़ेगा।
अच्छा, कोर्ट में हम लोगों ने अर्जी लगा
दी, स्टार्ट करना पड़ेगा, कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। जैसे एग्रीमेंट के हिसाब से लिखते हैं कि सेलर फोरफिट, सेलर अगर बैकआउट होगा तो डबल देगा, बायर अगर बैकआउट होगा तो, दोनों के लिए है।
हाँ जी, हाँ।
तो वो अल्टीमेटली वो चीज इंप्लीमेंट करने के लिए आइदर ऑफ द पार्टी हैज टू गो द कोर्ट।
तो मतलब ये 3 साल वाला जो क्लॉज है ये दोनों के लिए है,
दोनों
सेलर के लिए और बायर के लिए।
जी जी जी।
तो मतलब अगर मैं कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ तो अब आपका पॉइंट अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आई शुड मेक श्योर कि जो मेरा बायर है प्रॉपर्टी का, अगर मैं सेलर हूँ तो जो बायर है वो बायर के पास इतना पैसा है कि वो खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा,
उसके सोर्सेज ठीक
हैं कि नहीं है,
वो आगे बेचने के लिए तो नहीं ले रहा, प्रॉफिट कमाने के लिए।
हाँ, ऐसा भी होता कई दफा, अगले का नहीं बिका
तो उसके थोड़े से पैसे उसने दे के मुझे एग्रीमेंट करके फंसा लिया, बाकी के फंड्स वो नहीं दे रहा, तो मुझे चेक करना है, वो जरूरी है एज ए सेलर।
अब अगर सपोज करो आमतौर पर ये है कि मैंने एक प्रॉपर्टी फाइनल की और सपोज करो एक प्रॉपर्टी 20 लाख की है, तो उसका जो भी सिस्टम बना था 5 लाख 7 लाख एडवांस जो देते हैं हम लोग, मैंने एडवांस दे दिया और हमने रिटर्न भी कर लिया
जी।
अब रिटर्न में डेट भी लिख दी
जी।
अब वो जिस दिन लिखी गई डेट रजिस्ट्री की, उस दिन किसी कारणवश मेरे पास मेरे फंड्स अरेंज नहीं हुए,
नहीं हुए जी।
जैसे सपोज मेरे को आने थे कहीं से
जी,
वो नहीं दे पाया बंदा, या वो एक्स वाई जेड रीजन
जी।
तो उस केस के अंदर हमें क्या करना फिर?
उसमें तो देखिए ऐसे एज ए परचेजर जो है वो सेलर को रिक्वेस्ट कर सकता है
ओके
कि उसकी डेट में एग्रीमेंट में थोड़ा एक्सटेंशन कर ले, एंड दैट इज क्वाइट पॉसिबल।
सो दिस इज म्यूचुअल या रिस्क रिपोर्ट में जाना पड़ता है?
दिस इज द म्यूचुअल, यू कैन सिट अक्रॉस द टेबल, यू कैन हैव ए म्यूचुअल डिस्कशन कि मेरे फंड्स आने थे या नहीं आए हैं, तो ही कैन डिमांड एक्सटेंशन एंड एमिकेबली विद द कंसेंट ऑफ द सेलर द एग्रीमेंट बी एग्रीमेंट कैन बी एक्सटेंडेड। जो ये रिक्वेस्ट है इट शुड नॉट बी वर्बल ओनली, इट कैन बी मेड विद सम पार्ट पेमेंट टू शो द जेन्युइनिटी।
ओके,
एज ए परचेजर अगर आप कह रहे हो मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पास इतने पैसे आने थे नहीं आए, चलो इतने आ गए, थोड़े आ गए, कम आ गए, तो उससे क्या है कि एज ए सेलर मुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा और मुझे थोड़ा मेरा ट्रस्ट भी बनेगा,
कॉन्फिडेंस
भी बनेगा कि बायर ठीक कह रहा है।
अब जैसे सपोज करो कोई ग्रैंडफादर थे, उसके नाम से प्रॉपर्टी थी
जी,
अब वो नहीं रहे
जी,
फिर उनके आगे तीन बच्चे, उनके आगे दो बच्चे और हैं जिनमें डिवाइड होगी
जी जी,
अब उनको पेमेंट करनी है मेरे
जी,
तो वो जो सबसे बड़ा भाई वगैरह मुझे दे दो सारी पेमेंट।
नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना है। जितनी उसकी एज पर ऑनरशिप प्रूफ है, एक प्रॉपर्टी में फर्ज करो 25% के चार शेयर होल्डर हैं
जी,
तो जो भी हम पेमेंट करेंगे उसको चार हिस्सों में 25% के हिसाब से उसके उसके शेयर के अकॉर्डिंग पेमेंट देंगे।
ओके, ऐसा नहीं है कि वो कहे मैं घर में पड़ा हूं मेरे को दे दो पेमेंट?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा जी।
ओके, तो फिर जब वो मतलब आप ये कह रहे हो कि जब रजिस्ट्री भी होगी तो सारों को आना पड़ेगा?
सारों को आना पड़ेगा।
तो मतलब जैसे एक से डील कर रहे हैं उसको एडवांस दिया कुछ हमने, ऐसे वो एडवांस भी डिवाइड करके देंगे
डेफिनेटली,
और ऐसे ही टीडीएस भी काटेंगे फिर
जी,
उसका।
जी 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 जी।
ओके, और रजिस्ट्री के टाइम भी सबको बुलाएंगे?
सबको आना पड़ेगा, सबकी फोटो होगी, सबको आना पड़ेगा। समटाइम्स कई केसेस में सेलर अब्रॉड होता है, देन वो पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, वहां से एम्बोर्स होके हाई कमीशन से आती है, यहाँ पर एम्बोर्सिंग होती है सेक्रेटरिएट में, देन वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू भी हम उसके थ्रू डील कर सकते हैं। समटाइम्स सेलर अब्रॉड है
ओके,
तो वो तो आ नहीं पाएगा,
तो उसके बेसिस के ऊपर वो रजिस्ट्री हो सकती है।
फिर ऐसा नहीं है कि हमने अथॉरिटी पे करना है, हमें पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर रजिस्टर्ड वहां से आती है अब्रॉड से, उस वो पावर अटॉर्नी होनी चाहिए, यहाँ एम्बोर्स होनी चाहिए सेक्रेटरिएट में, उसके बेस पे हम एग्रीमेंट और रजिस्ट्री वगैरह करवाएं। देन जो आपका डील का लास्ट स्टेप है वो बहुत जरूरी है, काफी लोग करते नहीं, भूल जाते हैं, समटाइम डीलर भी उसको इग्नोर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अप्लाइंग मोटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी।
ओके,
सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू इमीडिएटली अप्लाई मोटेशन टू द अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्री।
ये मोटेशन भी हर तरफ है?
हाँ जी,
पूरे इंडिया में ऐसा ही है सिस्टम?
हाँ जी हाँ जी।
और ये सारी प्रॉपर्टियों के लिए है या पर्टिकुलर जैसे फ्लैट है इसके
लिए? नहीं, फ्लैट के लिए भी है, हाउसेस के लिए भी है, लैंड के लिए भी है,
एग्रीकल्चर लैंड के लिए।
हाँ जी, लैंड में क्या होता है कि आप पटवारी के पास जाते हो, वो आपके नाम फर्ज चढ़ाता है, इंतकाल जिसे कहते हैं।
ओके,
ठीक है। और जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है, हुड्डा पुड्डा हाउसिंग बोर्ड, ये अपने मोटेशन करते हैं, मीन्स उस रजिस्ट्री के बेस पे आपके नाम ऑनरशिप की लेटर इशू करते हैं, देन यू बिकम एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। सिर्फ रजिस्ट्री कराने से आप ऑनर नहीं बनते हो, रजिस्ट्री करवा के आपने इंटीमेट करना है डिपार्टमेंट को, जहाँ की भी प्रॉपर्टी है, वेदर इट इज अंडर एमसी, अंडर हुडा, अंडर स्टेट ऑफिस, अंडर हाउसिंग बोर्ड, अंडर डीडीए, यू हैव टू इन्फॉर्म देम, फिर वो आपके नाम मोटेशन कराएंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समटाइम लोग करवाते नहीं है।
तो ये सारा का सारा जो ज्ञान है
जी,
ये देना तो मुझे अब लग रहा है कि प्रॉपर्टी जो कंसल्टेंट आपको उसको चाहिए।
हाँ जी
तो मेरे प्रॉपर्टी फाइल करने से पहले आई थिंक ज्यादा इम्पोर्टेंट यही हो गया कि आपका जो कंसल्टेंट है जो प्रॉपर्टी दिलवा रहा है
जी,
उसको आप फेयर अबाउट्स और उसकी सर्विसेज की लिस्ट चेक करें। आमतौर पे ये इतना डिस्कशन करते नहीं है प्रॉपर्टी डीलिंग में?
नहीं, वो करते नहीं है, बल्कि
आई थिंक अब जब ये देख लेंगे ना शो लोग, हम लोगों का जो डिस्कशन देखेंगे ना, इस डिस्कशन के बाद में मेरे को लगता है बड़ा क्लैरिटी इनको मिलेगी, है ना, और साथ में अब वो लिस्ट डाउन करेंगे कि वो जब आप किसी कंसल्टेंट से मिल रहे हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से, तो भाई मुझे ये सर्विस चाहिएगी। हम कहते तो हैं कि सपने का घर बनेगा,
हाँ जी,
80% लोग तो डिससैटिस्फाइड है। मैं होप करता हूँ इस डिस्कशन के बाद शायद कुछ लोगों को कुछ ज्ञान मिलेगा
जी,
और शायद वो 80% से परसेंटेज काफी कम हो जाएगी
जी। जी,
इस पूरे प्रकरण के अंदर के मैंने मकान देखा, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फाइनल किया, फिर मैंने लीगल कराया, फिर मैंने बयाना दिया, फिर मैंने रजिस्ट्री कराई, फिर मिटेशन करा ली, 80% के ऊपर मैं बारी बारी इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि वो कोर है हम लोगों के डिस्कशन का
जी।
तो एंड में अगर हम ब्लैक शिप निकालने की कोशिश करें तो कौन है ब्लैक शिप, तो आप ये कहते हैं कि मतलब ब्लैक शिप की बात करें
जी,
तो एक ब्लैक शिप आप कौन किसको कहोगे भाई ये ब्लैक शिप है इसका ध्यान रखना।
कोई भी अगर हम डील करते हैं ना उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से करें।
ओके,
ऐसा नहीं कि आप सिर्फ गुड फेथ पे डील करें। कई बार हम आपसदारी में कह देते हैं ये मुझे जानते हैं इतना पैसा दे दो, उसकी हम प्रॉपर रिसीप्ट नहीं लेते है ना। तो इट्स बेटर कि हम जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। प्रोटोकॉल या सिस्टम इज लाइक हम प्रॉपर्टी पसंद करें, फिर ऑनर से मिलें, फिर डॉक्यूमेंट देखें, वेरीफाई करें, फिर एग्रीमेंट करें, है ना, फिर रजिस्ट्री कराएं, हर बार जब भी पेमेंट दें उसे रिसिप्ट लें पेमेंट की। जब कभी हम मतलब इस सिस्टम से बाहर निकल के काम करते हैं तब हमें प्रॉब्लम आती है।
ओके, अदरवाइज स्मूथ है।
कल को हमने रजिस्ट्री करानी है, घर वेकेट होना चाहिए। समटाइम को होते हैं खाली नहीं है जी, हम रजिस्ट्री करा लें, फिर बाद में उसको आप रिक्वेस्ट करते रहो, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से करेगा, फिर आप फंस गए। तो यू शुड डू योर डील एज पर सिस्टम और प्रोटोकॉल।
ये सब बातें तो हमने करी हैं कि जो कोई खरीद रहा है वो क्या ध्यान रखे,
जो बेच रहा
है वो क्या ध्यान रखे
जी,
पर जो फंस चुके हैं वो क्या करें।
फंस गए हैं उनके पास तो कोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं है, वो तो कोर्ट में जाएंगे। क्या
क्या आमतौर पे वो ये सोचता है ना कि यार चल इसे मीटिंग करते हैं, देख लेते हैं, बात
देखो। पहले ही ट्राई तो यही होनी चाहिए कि आप जिसके पास फंसे हो, एग्रीमेंट है, पैसे हैं, आप उसे कोई फैसला कर लो बैठ के एमिकेबली, थोड़ा प्लस माइनस करके उसे सेटल कर लो, बेटर है जा काफी साल कोर्ट में खराब करने से बेहतर है। अगर आप उस एडवाइजेबल तो यही है कि आप उससे ऑन द टेबल सेटलमेंट करें, जो आपका पैसा वापस आ गया आप उसको दोबारा कहीं रीइन्वेस्ट कर लेंगे, ले लेंगे, आप उसको यूज कर लोगे इंस्टेड ऑफ लाइफ का प्रीशियस टाइम। आप ऐसी 10-20 साल कोर्ट में गए, कोर्ट का आपको पता है कि ऑलरेडी कितने केस पेंडिंग चल रहे हैं, और सिविल मैटर है आपके 10-15 साल निकल जाएंगे, फिर आपकी रिक्वायरमेंट तो आ जाए, 10 साल बाद मिलेगा, उसका क्या यूज होगा।
बिल्कुल ठीक है।
एडवाइजेबल तो ये है कि इसको हम एमिकेबली बैठ के पहले ही रिजॉल्व कर लें।
मैंने ये देखा सर, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं
हाँ जी,
उनके ना बोर्ड लगा होता है कि उनकी कोई सोसाइटी के वो मेंबर हैं।
हाँ जी, हाँ जी, एसोसिएशन,
जी एसोसिएशन
प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन
जी, ये आई थिंक हर शहर में है,
हर शहर में है जी, सभी ने बना रखी है।
तो उसकी क्या सपोर्ट ले सकता है बंदा?
बिल्कुल ले सकता है जी, एसोसिएशन में अगर वो मेंबर है डीलर और कोई गड़बड़ करता है तो जो क्लाइंट है वो एसोसिएशन में जाके कंप्लेंट दे सकता है।
ओके,
तो एसोसिएशन उस डीलर को बुला के उसे उसकी कोई भी सेटलमेंट है या प्रॉब्लम ग्रीवियंस सॉल्व कर सकता है।
तो कुछ इस तरह का भी सिस्टम है टिपिकली प्रॉपर्टी को लेके, जैसे आपने कहा एसोसिएशन है, तो क्या एसोसिएशन में भी कुछ लोग होते हैं जो बैठते हैं बिचौलियापन जिसको बोल दें?
डेफिनेटली दे कैन हेल्प इट
आउट। अच्छा, वो कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, वो दोनों पार्टीज को बुला के बैठा के आपस में फैसला करवा देते हैं।
एक तो ये हो गई
जी।
इसके अलावा ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके ऊपर कोई मतलब हम कहते हैं बिचौलिया कर ले या मध्यस्थता कर दे?
वो तो फिर आपका जो लोकल सर्कल है, लोकल सर्कल मींस कोई बीच में आपका कोई फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार भाई बंधु है, वो बीच में कॉमेज मीडिएटर बन के आपका कॉम्प्रोमाइज करवा देगा। तो दैट इज बेटर कि कॉम्प्रोमाइज करे बजाय कि लीगल में जाके 10-15 साल लाइफ के वेस्ट करे।
जितने मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे ना
जी जी,
इनमें सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो सोसाइटी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं।
अच्छा जी,
हाँ
जी,
तभी लोग 80% वाली फिगर पे आते हैं
जी जी।
और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे भी थे जब मैं घर खरीद रहा था
जी,
तो मुझे भी यही डर था कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, और पर मेरे जो क्वेश्चन थे उनका जवाब मेरे को मिल नहीं पा रहा था
जी।
तो आज इस कन्वर्सेशन में आपने उन सब क्वेश्चंस के जवाब दिए
जी,
और होपफुली जो भी हम लोगों का पॉडकास्ट सुन रहा है या देख रहा है
जी,
वो दोनों के दोनों लोग इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लेके जरूर उठेंगे
जी।
जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि 80% लोग डिससैटिस्फाइड हैं, चाहे वो पहला घर ले रहे हैं या दूसरा घर ले रहे हैं। उन 80% लोगों के लिए ये पॉडकास्ट हम लोगों ने बनाया। समझदार होंगे तो बच पाएंगे, यही मेरा एक पॉइंट है जिसको आप सब समझें। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जो लोग भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या खरीदने वाले हैं उनको पता हो, तो आपको तो पता चल गया। ऐसी जो आपके जानने वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या कोई भी जानने वाला है, उसके साथ आप शेयर ज़रूर करें। उनको भी एम्पावर करें कि मकान खरीदते वक्त किसी तरह की डिससेटिस्फैक्शन उनको ना हो। थैंक यू वेरी मच।